نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم پیغام قرآن سیریز میں پارہ نمبر 8 کریں گے. دیکھیے پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان ایک ایک کر کے اگلی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو اگر تھوڑی سی مزید توجہ دے دیں تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ چیزیں اس کے فہم کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو آپ کے میرے لیے رکھا. آٹھویں پارے میں آپ سورۃ الانعام کا آخری حصہ یعنی آیت 111 سے خاتمہ سورۃ تک اور اس کے بعد پھر سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ پڑھتے ہیں. اگر ہم اس پارے کو ایک گو میں جانے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بنیادی پیغام کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چکنی چپڑی باتیں اور ماحول کے اثر سے بعض دفعہ ہم بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے اپنے صبح کے دورہ قرآن کے سلسلے میں اس پارے کو شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو یعنی فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ مسلمان شیطان کی پیروی کرنے لگ جائے تو اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا. سورۃ الانعام کے مضامین کو دہرا لیتے ہیں. تذکیر بھی لا الہ تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کائنات پہ غور کراتے ہیں. جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایون کھانا پینا, فروٹ چاٹ بناتے ہیں آپ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے تو کتنے مختلف رنگ ہوتے ہیں نا. تو اگر ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں اور ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا پیار تو مل ہی جاتا ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سورج کو دیکھیے, چاند کو دیکھیے اور ستاروں کو دیکھیے. آپ جتنا زیادہ ان کے قریب سے قریب جاتے جائیں گے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ دکھے گا, اللہ تعالیٰ کا قرب دکھے گا. تو جب آپ اللہ کی نعمتوں کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی دیوی ہیں تو وہ چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہیں اور آج اس کی بہت ضرورت ہے. پھر اسی طرح بنیادی ایمانیات دیکھیں. ایمان ثلاثہ بولتے ہیں اس کو یعنی توحید, رسالہ اور ایمان بالآخرہ. یہ تین چیزیں انسان کے عقیدے کا حصہ ہوتی ہیں. اس کے اوپر اس صورت میں بات ہوتی ہے. پھر مشرکین سے دو ٹوک گفتگو ہے یعنی ویری اسٹریٹ فارورڈ. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا, آپ کبھی کبھی ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں, کبھی کسی اور رنگ میں کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے کو بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر بیٹھ کر بات کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال سے جو وہاں پیغام دے رہے تھے تو بالآخر آپ کو اس صورت میں بہت کلین کلیئر دکھے گا. اس لیے بعض لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی دفعہ کافر کا لفظ کیوں ہے, کفر کیوں ہے, جہنم کیوں ہے. تو سمجھ لیجئے گا کہ جب بات کہتے کہتے اتنا وقت گزر جائے اور دوسری طرف کوئی کہانی نہ دھرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انداز بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں آیتوں کے ساتھ اس کے ٹاپک سورۃ الانعام کا جائزہ. آیتوں کے ساتھ 111 پہلی ہی آیت پارے کی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا. اس میں ٹاپک لکھیے کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ ایک اور سلیش میں اس کا سب ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں مطالبے کرنے والے ایمان نہیں لاتے. کیونکہ مطالبوں سے اگر ایمان آتا تو ابو بکر صدیق نے تو کوئی معجزہ نہیں مانگا پھر بھی ایمان لیا. آج بھی لوگ کہتے نہیں کچھ کرو, کچھ کہو, بتاؤ, پھر لوگ آئیں گے بتائیں گے. نہیں, جن کے دلوں میں ہدایت کی سچی طلب ہوتی ہے نا وہ آتے ہیں. اور مزے کی چیز دیکھیے ساتویں پارے کی پہلی آیت میں وَإِذَا سَمِعُوا میں کن لوگوں کا تذکرہ سنا کہ جو بالکل وہ کہتے ہیں پائلٹ فلیم جل رہا تھا اندر, صرف وحی الہی کا نور گیا اور ان کے اندر ایمان آ گیا. حبشہ سے آئے ہوئے لوگ. ادھر بالکل اس کا اپوزٹ ہے. یہ بھی خوبصورتی ہیں پارے کے شروع میں کیا ہے. یہ غور و فکر کرتے جائیں گے ایک وقت آئے گا آپ کو قرآن ایسے لگے گا کہ آپ کا پرانا شہر جس کی گلیوں کو بھی آپ جانتے, محلوں کو بھی جانتے, کوچوں کو بھی جانتے. ہمارا آج کل تعلق قرآن پاک سے بالکل ایک رسمی دین ہے. ہم دور سے جیسے ہاں کبھی کراچی گئے تھے وہاں سمندر دیکھا تھا, ہاں ہاں وہاں وہ بھی تھا, ہاکس بے بھی تھا, وہاں پیراڈائز پوائنٹ تھا, بس پھر واپس آ گئے. ہمارا بس قرآن سے کوئی اتنا ہی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر گہرائی سے ڈوبنے والا بنائے. پھر یہ چیزیں آپ کو ایسے یاد رہتی ہیں جیسے بچے کے نام یاد رہتے ہیں. تو قرآن پاک میں یہ غور و خوص, یہ فکر, یہ آپ کے میرے فائدے کی چیز ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 112 سے 113 شیاطین خوش نما باتیں دھوکہ دینے کے لیے سجھاتے ہیں ये असल में ज़ुख्रुफ़ अल़क़ाल यानी असल पे नकल करना, मैनिपुलेट करना भी इसका मानी आता है, और शुगर कोटेड बातें करना, जहर के ऊपर चीनी डाल के खिला दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, आप नकली चीज़ के ऊपर असली पानी डालें, सोने का करके बेचें, आज ये हो रहा है। आज उम्मत मुस्लिमा पे एक बहुत बड़ा फितना जो वो यही कि बातों के जाल हैं। मीडिया को देखिए, एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को देखिए, बेकार चीज़ें खूबसूरत रैपर्स में डालकर बेची जाती हैं। आपको शायद अंदाज़ा हो कि जब सिगरेट शाम किए जाने थे, शुरू में जिसने कभी सिगरेट बनाया, ये 19वीं सेंचुरी के शुरू की बातें हैं, तो सिगरेट आम नहीं हुआ, लोगों ने कौन लेगा अपने अंदर धुआं डाले, कोई डालता जहन्नम का धुआं, या कह लीजिए कि आप जाकर स्मोक को इनहेल करें। तो जो कंपनियां थी वो बैंकरप्ट होने लगी, बिल आखिर उन्होंने फिर जो तरकीब सोची, मशहूर लोगों को जिसको आप मसादाकार, गुलूकार, आर्टिस्ट, उनको हायर किया, उनके हाथों में सिगरेट पकड़ाए, फिर फिल्में बनाई, और लोगों ने जब अपने पसंद के लोगों को ये कुछ करते देखा, सिगरेट आम हो गया। तो ये भी ज़ुख्रुफ़ अल्कोहल है, असली पे नकली, नकली पे असली। आप देखिए कि आज यही हो रहा है, जैसे आप कहते हैं ना, नक्कालों से होशियार रहिए, तो आज भी नकली दीन देने वाले बहुत सारे हैं, और बच्चों को चिप्स के नाम पे या कभी कभी कोई और अजीबो गरीब स्नैक्स के नाम पे, बाज़ दफ़ा बिल्कुल बेकार और सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें खिलाई जाती हैं। फिर इसी तरह आयत नंबर 114 से 115, सिर्फ माबूदे बरहक ही ने आदिलाना अहकामात नाजिल किए हैं या अता किए हैं, यानी इस दुनिया को अगर कोई अदल दे सकता है, औरत को औरत का हक, मर्द को मर्द का हक, तो वो कौन है? वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला। आज हम सारी दुनिया के इज़्म की बात करते हैं, कभी सोशलिज्म की बात करते हैं, कभी हम जमहूरियत के डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दुनिया में अमन चैन कब आएगा? जब अल्लाह के निज़ाम नाफिस होंगे। फिर आयत 116 to 117, अक्सरियत की पैरवी गुमराह कर देगी, क्योंकि वाइन तो थी अक्सर अमन फिल अर्दी युदिल्लू कन सबी लिल्ला। हम कहते हैं मेजोरिटीज़ अथॉरिटी, तो जमहूरियत कुछ भी नहीं है, एक अनपढ़ का और एक आलिम दीन का वोट जब एक ही जैसी हैसियत रखे, तो बताइए कि वहाँ फिर आगे जाके क्या होगा? बुनियादी आपने ऐसी डाल दी, तो बाकी चीज़ें तो फिर इससे आगे हैं। फिर 118 से 21, म्यारे हक शरीयत है, मौरूसी तसव्वुरात नहीं। हमारे पास आज दिन मौरूस, आज के दौर में हम मुसलमानों के पास जो दीन है ना, ये मौरूसी है, विरासत में मिला हुआ, विरसे में मिला हुआ दीन है। हालांकि हक का मेयार ये नहीं है कि आपकी माँ क्या करती थी, आपकी दादी क्या करती थी, आपके दादा क्या थे। अरबों में जितनी बिदात थी, जिसका अब आगे सूरत अल-अनाम में जिक्र भी आने वाला है, ये अपने बाप दादा के नाम पे करते थे, कि शुरू से ही हमने अपने बाप दादा को यही करते देखा। तो याद रखिए, आप बाप परस्ती बहुत अच्छी है अगर बाप, माँ बाप और जो बड़े थे वो अल्लाह ताला के हुक्मों पे चल रहे थे, और उसका अपोजिट भी। फिर आयत 122 में, गफलत की ज़िंदगी बसर करने वाला मुर्दा है, अब अमन का न मई तनफा यही ना हो, यानी यहाँ दिल की ज़िंदगी की बात है कि जब जिस्म बेकार होता है तो इंसान जिस्मानी तौर पे मर जाता है, इसी तरह जब जिस्म से रूह निकलती है तो इंसान एक मुर्दा कहलाता है, बिल्कुल इसी तरह जब हमारी रूह, हमारा दिल, यानी दिल में रूह रहती है, रूह मर गई तो दिल मर जाएगा, दिल मुर्दा दिल नहीं इसे ज़िंदा कर दोबारा, तो गफलत की ज़िंदगी से दिल मुर्दा होता है। कुरान का पानी देंगे, वही इलाही का नूर पड़ेगा, तो आपके मुर्दा दिल जिंदा होंगे, और इस मुर्दगी को दूर करने के लिए इसको कुरान के चश्मे के पास ले आइए, कुरान की बारिश बरसती है, आप उसके पीछे खड़े हो जाएं, नीचे खड़े हो जाएं, जब जैसे जिस तरह उससे फ़ायदा उठा सकें, आप देखेंगे कि एक दिन आपका दिल, फिर उसके अंदर कौंपले उगेंगी, फिर उसमें ईमान का बीज पड़ेगा, और ऐसे ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप वजअलना लहू नूरन की कैफियत अख्तियार कर चुकी होंगी, जो यमशी बिही फिन नास होगा। फिर इसी तरह से 123 से 124, बस्ती के सरदार बस्ती के मुजरिम बन जाते हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं, अक्सर अंबिया कराम की मुखालफत बड़े लोगों ने की, और हम बड़े लोगों के नाम के साथ जानते हैं, हाँ जी बड़े लोग हैं, अरे आज तो बड़े लोग आ गए, किसको कहते हैं? किसी माशरे की क्रीम, क्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो अमूमन देखिए, हक के रास्ते में इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इनको अगर हक मानना पड़ गया तो इनकी बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, इनके बिजनेस फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कई चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की आ गई। और इसी तरह से छोटे लोगों को क्या लगे, एक रेडी लगाने वाले को क्या लगे कि सूद क्या होता है और इसके अलावा इसकी बारीकियाँ क्या हैं। तो लिहाजा ऐसे लोग जब देखते हैं कि हक की आवाज़ बुलंद हो रही है, तो ये कहते हैं इसको दबा दो, वरना हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर आयत 125 से 127 है, कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही पे है। दुनिया में अल्लाह को तो ये पहले से ही पता है, लेकिन बंदों को पता चलेगा क़यामत के दिन। आज दुनिया में हक की बात करने वाले को लोग अक्सर बुनियाद परस्त और एक्सट्रीमिस्ट और इसी तरह के नाम देते हैं, तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक काबुल कर दिया। फमै युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। फिर इसके बाद 128 से 129 इंसानों की अक्सरियत नाकाम होगी। सोच के दिल पे हाथ पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग कीजिए। तो वो पूछेंगे, अल्लाह ताला किस हिसाब से रखूँ? तो फरमाया, हर 1,000 लोगों में से एक को जन्नत की तरफ डाल दो और बाकी 999 को जहन्नम की तरफ। ये बात सुन के सहाबे किराम घबरा गए, इतना उनको खौफ आया। तो उस पर अल्लाह के नबी ने कहा कि इस तादाद में याजूज माजूज भी होंगे। कभी आपने मैंने इसको सोचा? हम अक्सरियत के पीछे भागते हैं, लेकिन अक्सरियत तो नाकाम होगी। इसलिए हमेशा हक का साथ दीजिए, चाहे आप अकेले ही खड़े हो हक का झंडा लेकर। फिर इसी तरह आयत 130 से 135 तक, अल्लाह ताला किसी को नाहक अजाब नहीं देगा। अल्लाह ताला की शान क्या है कि वो बंदे को पहले नेमत देता है, मौका देता है, संभलने का एहसास दिलाता है, फिर वो नहीं मानता तो फिर अल्लाह ताला उसको वहाँ से हटा देता है। पूरी पूरी कौमें इस कानून के तहत मिटा दी गई। तो अल्लाह ताला ने ये बात करके आपको मुझे बता दिया कि वली कुल इन दौरा जाते मिम्मा मिलो, अमल कीजिए, आपका काम देखा जाएगा। काम अच्छा नहीं होगा तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना लगें, लेकिन उम्मत मुस्लिमा कहला लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहला लीजिए, आपका इंजाम ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिर इसी तरह से आयत नंबर 136 से 140, इसमें मुशरिक पंडितों के मन घड़त फैसले, ये वो बिदात हैं जो अरब माशरे में अल्लाह के नबी के वक्त पे बहुत ही आम थी, और बाप दादा के नाम पे किसी जानवर को हराम करते थे, किसी को हलाल करते, ये औरतें ना खाएं, ये मर्द ना खाएं, इस पे कोई सवारी ना करे, ये तो पहुंचा हुआ है। अल्लाह ताला करे मैंने ऐसी कोई शरीयत नहीं दी। अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों में भी ऐसी शरीयत आम हो गई। इस दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नती हो, रजब के कुंडे ना भरे तो तुम्हारे साथ ये होगा, और अगर दुल्हन के आने पे तेल ना चौखट में डाला तो ये होगा। तो ये बेकार बातें वक्त के अपने आपको नेक समझने वाले लोगों की तरफ से होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर आयत नंबर 141 से 144, फलों और जानवरों में अल्लाह की कुदरत के शाहकार है। आप देखिए कैसे अल्लाह ताला ने इस कायनात में खूबसूरती रखी। इस वक्त भी अगर मैं अपनी विंडो से बाहर देखूँ तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उठी अपनी क्लास के बाद ऊपर बाहर देखा तो मेरे मुंह से एकदम निकल गया, क्या आर्टिस्ट्री है। यकीन करें कि जेट ब्लू आसमान, बिल्कुल खूबसूरत दूधिया से लेकर ग्रे कई शेड्स के बादल, और पीछे सब्ज खूबसूरत पहाड़, क्या मंजर है। कभी आपने सोचा कि ये कौन बनाता है? कितने पैसे देने पड़े ऐसी ड्राइंग को या कैसी पेंटिंग को लेने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं। और आजकल तो वैसे ही घरों में खप तप गए हैं, ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर बाहर निकला करें, कभी गौर व फिक्र करके देखें। आपको कभी जानवर दिखेगा तो आप परेशान होंगे, आप बिल्ली देख के परेशान हो जाते हैं, ये क्या उछलती कूदती, कैसे फ्लेक्सिबल है, ए बिल्ली तुझे किसने बनाया। तो जितना गौर करते जाएंगे उतना बनाने वाले के करीब होते जाएंगे। हम आर्टिफिशियल चीज़ों में, ये आईफोन है, ये एंड्रॉयड है, ये सैमसंग है, ये फर्नीचर वहाँ से आया, ये हम मादी चीज़ों में रहते हैं ना, तो उन्हीं कंपनियों में खोए रहते हैं, उन्हीं नामों का सहर होता है, जबकि अल्लाह ताला हमें उससे बहुत ज़्यादा देते हैं। फिर आयत 145 से 147, इसमें अल्लाह ने किन चीज़ों को हराम किया है, यानी एक लिस्ट दे दी कि आओ मैं तुम्हें वो दीन दिखा दूँ, वो चीज़ दिखा दूँ जो साफ सुथरी निथरी हुई है। قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اور اسے آگے بھی مختلف چیزیں ہیں، کیا پتہ چلا کہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو۔ پھر 148 سے 150، مشرکین کی ایک خوش نما لیکن فریب کن دلیل، اور وہ کیا دلیل تھی؟ کہتے تھے جس جانور کو اللہ مار دیتا ہے اس کو تو تم کوئی نہیں کھاتے، کہ جی یہ تو مردار ہے، ہاں جس کو خود ذبح کر لو تو اس کو کھاتے ہو۔ اب دیکھتے انسان ایک دم گھبرا جاتا ہے، واہ بات تو بڑی ہے، لیکن یہ ہے ظروف القولی غرورہ۔ آج بھی اسلام کے بارے میں اسی قسم کی باتیں ہیں، یہ عورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں، یہ مردوں کو آگے کرتے ہیں، عزت نہیں ہے، فلاں نہیں، عورتیں جاب نہیں کرتی اور یہ نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ فریب کن باتیں اور دلیلیں ہر دور کے لوگ دیا لیا کرتے تھے۔ آپ نے میں نے علم سیکھنا ہے، پورا دین سیکھیے، اسلام کو خوبصورتی سے سیکھیے تاکہ کل کوئی بات کرے تو آپ پریزنٹ کر سکیں، بجائے اس کے کم شرمندہ ہو کے امبیرس مسلم بن کے گھر آنے لگے۔ پھر آیت نمبر 151 سے 154، تورات کے احکام اشرہ کی قرآنی تعبیر۔ آپ کو قرآن پاک کے اندر تورات اور انجیل کا صحیح حصہ، محفوظ حصہ بھی مل جائے گا۔ اس کی دلیل یہ آیات ہے کہ پہلے ادیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی تھی اور جو آج بھی کی ہیں، اس کو امہات شریعہ بھی کہتے ہیں۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم سے شروع ہو کر 10 احکام، جس کو اشرہ، احکام اشرہ या 10 कमेंडमेंट्स भी कहते हैं, उसका एक कुरानिक वर्जन है ये। फिर 155 से 157 नज़ूले कुरान मुशरिकीने मक्का के लिए इतमाम हुज्जत था, और आज आपके मेरे लिए भी है। कल तक कुरान नहीं था समझा हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने राहें खोल दी, तब हुज्जत भी तमाम हो गई। अब दिन ब दिन अपना इल्म बढ़ाना पड़ेगा, अपना अमल बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए फरमाया, वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन, हमने ये बरकत वाली किताब इसलिए नहीं नाजिल की कि इसको चूमो चाटो, इसको सर पे रखो, इसके तावीज़ बनाओ, इससे जिन भूत भगाओ, बेटियों की शादी पे रखो, बल्कि ये किताब क्यों है, फत्तबिउहु, इसकी पैरवी करोगे, और वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और अगली आयत में वो वजह है कि जिसके लिए कल को ये ना कह दे कि अंतकूल इन्नमा उन्ज़िलल किताब वला ताइफतैन मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन। हकीकत यह है कि लोग ऐसे ही करते हैं, नेमत ना हो तो शोर मचाते हैं, है ही नहीं, हमें बताया नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं तो पूछ क्यों रहे हैं, ये तो नहीं कहा तो ये था, हुआ तो ये है, लेकिन जब चीज़ आती है तो उनका हाल क्या होता है? वही हुआ जो मक्का वालों का हो, जिसके घर में अल्लाह का नबी मौजूद हो, जिन गलियों में अल्लाह का नबी फिरे, क्या वहाँ फिर अल्लाह के अजाब के कोड़े बरसे? तो सोच लीजिए कि लोग नेमतों की कितनी नाकदरी करते हैं। इसीलिए कहा उतकूल लवन्ना उन्ज़िला अलैना अल्किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम, यानी अगर हम पे कोई किताब उतरती तो हम बहुत हिदायत वाले होते हैं। तो बातें बहुत सारे लोग करते हैं, अमल के मैदान में फिर पीछे होने लग जाते हैं। फिर आयत नंबर 158, अल्लाह की निशानी देखने के बाद ईमान लाना और अमल करना मुफीद नहीं है। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा टाइम बाउंड किया है, जब मौत का वक्त आ जाए 3 साल पहले, इसी तरह जब सूरज मशरक़ की बजाय मगरिब से निकलने लगे तो हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, तो वहाँ फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, क़यामत से पहले ये होगा, और उस वक्त लोग सजदों में जाएंगे, तौबा करेंगे, लेकिन कह दिया जाएगा कि अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो आज तौबा के दिन है, आज अपने अकायद को रिवाइज करने की ज़रूरत है। फिर आयत 159, दीन के हिस्से बखरे करने वालों से अल्लाह के रसूल का कोई ताल्लुक नहीं। आपकी कापी के कुछ सफ़े फाड़ दे, आपको कैसा लगेगा? बहुत खुश होंगे, चलो इसने आसान कर दिया, इतनी मोटी किताब उठाए फिरती थी, आप छोटे सफ़े कर दिए, जो मर्जी उठा लो। नहीं, आपको गुस्सा आएगा, आपके कपड़ों को पकड़ कर कोई काट दे, तोड़ दे, फाड़ दे चीज़ें। तो अल्लाह की किताब को जब लोग ख़राब करें तो इन्नल्लज़ीन फर्रक़ु दीनहुम, और याद रखिए जहाँ किताब उठेगी, दीन के हिस्से बखरे होंगे, वहाँ फ़िरके बनेंगे, वकानु शियान, तो ऐसे लोगों से अल्लाह के रसूल का फिर कोई ताल्लुक नहीं है। फिर 160, नेकी का अजर 10 गुना मिलेगा, यानी एटलीस्ट जो फिगर अल्लाह ताला के यहाँ चलता है वो 1:10 का चलता है। मन जा बिल हसनती फला हुआ अशरम सालिहा, मेराज के तोहफों में से ये एक तोहफा है। आप एक नमाज पढ़ते हैं, आपको 10 का अजर मिलता है, एंड ऑफ द डे आपकी 50 नमाजें काउंट होती हैं। तो कभी एक नमाज छूट जाए, अल्लाह ना करे, तो ये कहा करे आज मेरी 10 छूट गई, और अगर एक कज़ा हो जाए तो आज मेरी 10 कज़ा हो गई। और इसी तरह से आयत 161 से 163, सिराते मुस्तकीम क्या है, यानी अब खात्मे सूरत की आयात है कि जिसमें अल्लाह ताला बड़े प्यार से बताते हैं, कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिराते मुस्तकीम दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा। और इब्राहिम कौन थे? वमा काना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह करे कि मैं अरबी में ही सिर्फ आयतें पढ़ती जाऊँ और आपको रब का पैगाम मिल जाए। यकीन करें इस वक्त ये उर्दू बोलना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मेरा दिल करता है बस हर आयत अरबी में पढ़ूँ, आपको ज़रा सी अपनी टोन से बताऊँ, देखिए आपका रब इसमें आपको क्या पैगाम दे रहा है, आपको क्या हिदायत दे रहा है, चले आगे चले। फिर दोनों ज़ुबानें पढ़नी पड़ती हैं, कभी अरबी कभी उर्दू, लेकिन मेरे दिल से कोई पूछे तो मेरा तो ड्रीम है कि मैं अरबी का दौरे कुरान कराऊँ, क्योंकि मेरे सामने वो लोग बैठे होंगे कि जिनको अरबी से कुरान पाक समझ आ रहा होगा। और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियाँ खपाने पर लगा दे इस किताब के राज पाने के अंदर। फिर इसके बाद आयत 164 से 165, सूरत की आखिरी आयत है कि जिसमें अल्लाह ने बता दिया रब्बे हकीकी अल्लाह ही है, अगर उसकी कदर आ गई, उसको समझ गए, तो फिर उसका हक भी अदा करोगे। तो ये थी चंद चीज़ें जो कि टॉपिक वाइज थी। अब चलते हैं चीदा चीदा आयतों के ऊपर। 116 to 117, जमहूरियत की नफ़ी, यानी मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। वजह, वहीं तो थी अक्सर अमन फिलर थी युदिल्लू कन सबीलिल्लाह, और अक्सर लोग जो ज़मीन पर आबाद हैं वो गुमराह हैं, अगर तुम इनका कहा मान लोगे तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। ये महज ख्याल के पीछे चलते और महज अटकल दौड़ाते हैं, तुम्हारा परवरदिगार इन लोगों को खूब जानता है। किन लोगों को खूब जानता है? जो इसके रास्ते से भटके हुए हैं, और इनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ा शोशा जो छोड़ा जाता है वो क्या है कि जो सब करते हैं वो ठीक ही होगा ना, इतने लोग करते हैं तो कोई गलत होगा। अच्छा क्या भला ये खराब है? अमूमन लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा जी चूंकि ज्यादा लोग हैं तो खराब नहीं होंगे, और साथ ही एक प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, लो भला अल्लाह इतनों को आग में डालेगा, लो भला इतने लोग नाफरमान हैं। तो अल्लाह कहते हैं आप कहते रहिए, सारी दुनिया भी अगर गलत काम कर ले तो अल्लाह उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर इसी तरह से 122 जिंदा और मुर्दा की मिसाल जो भी हमने देख भी ली, अब अमन का न मई तन फाही ना हो व जाल ना लहू नूर यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहू फिर जुलुमाती लई सभी खारिज मिनहा कजाली का जुजिन लिल काफिरी नमा का नुया मलूत। एक्सप्रेशंस के साथ कुरान की आयतें पढ़ा करें, जहाँ एक बात पूरी हो जाए वहाँ रुक जाएं, सोचना पड़े तो सोचिए, गौर व फिक्र करना पड़े तो कीजिए। ये जो हम एक रवा रवि का कुरान पढ़ते हैं ना, अब अमन का नमा इतफा ये ना, पता ही नहीं होता कहाँ चले कहाँ रुके। आम जिंदगी में तो ऐसी उर्दू कोई ना बोले, ऐसी इंग्लिश कोई बोले तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज़, हमारा ख्याल कीजिए। लेकिन कुरान के साथ क्या मामला है? तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरा दिल जिंदा, कि मेरा दिल मुर्दा तो नहीं हो चुका? और अगर इस किताब को उठाएंगे ना तो एक दिन आएगा हर जगह आपके चमकने से उजाला होगा। अलामा इकबाल की दुआ यही थी। फिर इसी तरह देखिए आयत 145, हराम चीज़ें क्या हैं? قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا, आप कह दीजिए जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं इनमें से कोई चीज़ जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, यानी मेरी शरीयत में तो ये सब कुछ हराम नहीं जो तुम कहते हो। हाम को, वसीला को, साहिबा को, ये उनके अपने जानवर थे, उनके नाम रखे हुए थे। बस एक ऊँट से अगर 10 बच्चे किसी मादा से जन्म लिए जाते तो कहते ये ऊँट बहुत बुजुर्ग हो गया, पहुंचा हुआ हो गया, उसको जाकर अपने बुजुर्गों और अपने बुतों के नाम पे छोड़ देते थे और उसको हाम कहते थे। अल्लाह ताला कहते ये सब तुम्हारी खुद साख्ता बिदात है। असल बात क्या है कि इस दीन में क्या हराम है, सिवाय इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज़ हो, कि इस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो ना फरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला में शरीयत का ताबे कर दे। फिर आयत 151, माशरती हिदायत, यानी किसी भी माशरे में रहते हुए इंसानों को इंसानों के साथ कैसे जीना है। قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं, कि किसी चीज़ को इसका शरीक ना बनाना और माँ बाप से बदसलूकी ना करना बल्कि अच्छा सलूक करते रहना, और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल ना करना, क्योंकि तुमको और इनको हम ही रिस्क देते हैं, और बेहयाई के काम जाहिर हों या पोशीदा इनके पास ना भटकना, और किसी जान वाले को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल ना करना मगर जायज़ तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे और इन बातों का वो तुम्हें इरशाद फरमाता है ताकि तुम समझो। अल्लाह करे कि हम इन माशरती हिदायत पे गौर करें। फिर आयत 152 में भी यही मौजू है, माशरती हिदायत, वला तकरबु माल यतीम, और यतीम के माल के पास भी ना जाना, राजा के बातिल तरीक़ों से उसका माल ना खा जाओ मगर ऐसे तरीके से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर इसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो गो वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत करो। तो क्या पता चला, जिस माशरे में ये कवानीन लागू हो जाएंगे वहाँ सुकून और खुशियाँ होंगी। अल्लाह ताला हमें वो दिन दिखाए कि हम इस्लाम की बहारें देखें। आज तो लोगों को पिसते दबते हुए ही देखा, लेकिन जब आप अल्लाह ताला के इस दीन को दुनिया से रोशनास कराते हैं, इसको मुतारफ कराते हैं, इस्लाम का खूबसूरत रूप उनको दिखता है, तो इसमें बहुत कशिश है। एक जुमला लिख लीजिए, हक में बहुत कशिश होती है। असल में जो हमारा कुरान सुनने के बाद फिर मजीद सुनने को दिल कर रहा होता है ना, और हम रोज़ कहते हैं हाई 2.5 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला, ब्लिंक ऑफ आई में यकीन कीजिए 2 आवर 30 मिनट निकल जाते हैं सुबह के दौरे कुरान में, और शायद ही 1 मिनट भी इधर उधर हो। किसी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि 250 से अगर कोई भी चीज़ ऊपर हो तो उसको निकाल दें, 2 आवर 30 मिनट से कोई ऊपर चीज़ हुई तो एडिटिंग में निकाल दें। तो उन्होंने कहा उस्ताज़ा क्या निकालें, हमें तो एक एक जुमला ऐसे लगता है कि ये तो जैम है, और सच भी यही है, क्योंकि कुरान का तो एक एक जुमला आपके मेरी हिदायत के लिए काफ़ी है। तो याद रखिए, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता, मेहनत कीजिए। और किसी से नोट्स लेकर अगर आप कोई काम कर भी लेते हैं वो रू नहीं आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नोट्स दे दीजिए, आप देखिए कि आप नमक मिर्च चने दाल सब्जी ले लें तो पेट भर जाएगा। उसको खिलाना भी सीखिए, उसको पिलाना भी सीखिए, और जो चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाए अगर आप वही दूसरों से शेयर कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। सिर्फ कापियों के सफ़े नहीं जाते, फिर वो जज्बात भी जाते हैं। और याद रखिए हर चीज़ की एक तासीर होती है, एक जज्बियत होती है, और वो काम कीजिए जो किसी ने ना किया हो, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस किताब का तो मिजाज भी ऐसा ही है। और फिर 162 मकसद ज़िंदगी खुलिन नसलाती व नुसुकी व महया व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी इबादत, मेरा जीना मेरा मरना चार चीज़ें हैं। अपने इर्द गिर्द ये चारों चीज़ों का एक हिसार कायम कर लीजिए तो आप देखिएगा जब सब रब्बुल आलमीन के लिए होगा तो आप भी कहेंगे इन्नी लिल्ला। लोग तो बाद में कहेंगे इन्ना लिल्ला, आपके मरने पे आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को अल्लाह का कहेंगे। और जब इंसान की ज़िंदगी में ये वक्त आता है ना उसके बाद जीने का मज़ा आता है। किसी ने ऐसी नहीं बात कह दी थी जो हमने बचपन से सुनी हुई है कि ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, हाय बग़ैर बंदगी के जो ज़िंदगी है कल उस पर शर्मिंदा ही होंगे। ये बातें निचोड़ होता है बड़ों का, तो आज के बाद अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी देने वाले के नाम लगाइए। और इस तरह से फिर सूरत अल अराफ शुरू होती है।